दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तेरे बिना ना आए सुकून ना आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो न पूरी, दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना, हर मुश्किल आसान हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। बाकी नहीं कुछ पर दिल न माने, दिल की बातें दिल ही जाने, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों पे ही मैं हूँ जिंदा, हर मंजिल हासिल हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते।
ओम शांति। एक समुद्र में एक नाव जिसमें ढेर सारे यात्री थे डूब रही थी, और जहाज के जो यात्री थे, जहाज पर जो सामान था, एक एक करके उसे फेंक रहे थे ताकि जहाज का भार थोड़ा कम हो जाए। और जब ये कर रहे थे तब एक बहुत बड़ी शार्क मछली भी उस जहाज का पीछा कर रही थी। बीच बीच में बाहर आ रही थी, फिर नीचे जा रही थी, और सारे यात्री बहुत डरे हुए थे। तो उन्होंने कुछ खाने की चीजें उस शार्क के मुंह में फेंकना चालू कर दी, और उस जहाज में बहुत सारे संतरे थे, पिटारे, वो जहाज ढो रही थी, तो वो बहुत सारे संतरे उठा उठा कर उस शार्क के मुंह में डाल रहे थे ताकि वो शार्क थोड़ी सी शांत हो जाए। और भी बहुत सारी खाने की जो चीजें थी वो उठा उठा कर उसके मुंह में डाल रहे थे। और जब सारा खाने का सामान पूरा हो गया तो उनको लगा कि अब क्या करें, और देखा यात्रियों के बीच एक बहुत कंजूस व्यापारी है जो उस जहाज पर भी लोगों को ठग रहा है। तो सारे लोग सोचते हैं इस व्यापारी को पकड़कर शार्क के मुंह में फेंक देते हैं ताकि कम से कम इस शार्क से तो पीछा छूटे। तो वो बहुत चिल्लाता है पर उसकी एक न सुनते हुए सब लोग उसको पकड़ते हैं और शार्क के मुंह में फेंक देते हैं। परंतु उस जहाज के साथ, उस जलयान के साथ जो होना था वो हुआ, और अंततः वो जहाज डूब गया और शार्क तो इसी के इंतजार में थी, और सारे लोगों को उसने हप कर लिया। जब यात्री शार्क के पेट में पहुंचे, शार्क के पेट में, शार्क बहुत बड़ी थी ना, तो देखा वो जो कंजूस व्यापारी था टेबल और कुर्सी लगाकर संतरे बेच रहा था, और जो पुराने लोग शार्क ने खाए थे वो खरीद भी रहे थे। स्वभाव पीछा नहीं छोड़ता है, व्यक्ति का स्वभाव उसके साथ ही चलता है। तो जो संस्कार, जो स्वभाव उस व्यापारी के, उस कंजूस व्यक्ति के थे, उस शार्क के पेट में जाने के बाद भी अपना काम कर रहे थे। इसलिए आज की मूर्ति में बाबा ने बहुत सारे कमजोर स्वभाव की गिनती कराई है। कौन कौन से? मेरी नेचर ऐसी है, मैं तेज बोलता हूं, आवेश मेरा स्वभाव है, और कौन कौन से संस्कार? कमजोर स्वभाव, दिल शिकस्त, हीनता के, अच्छे हैं पर समझते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, और अभिमान के, और कौन सा स्वभाव जो आज की मूर्ति में बताए? वो नहीं, कमजोर स्वभाव की बात चल रही है। वो तो बाप समान तुम्हारे स्वभाव होने चाहिए, वो दूसरी बात। किन किन स्वभावों को गिनाया बाबा ने? मैं कमजोर हूं, मैं दिल शिकस्त, मैं आवेश, अभिमान, ईर्ष्या, ये सारा स्वभाव की लिस्ट है। वैसे स्वभाव शब्द बड़ा ऊंचा शब्द है, श्रेष्ठ शब्द है, स्व के भाव में स्थित हो जाना। परंतु जैसे तुम लोग कहते हो भाव स्वभाव, तो बाबा ने कहा कि जैसे किसी को विदाई दी जाती है तो क्या किया जाता है, मिश्री, इलायची और बादाम। हमको याद है एक बार हम कहीं जा रहे थे तो हॉस्पिटल में ये दे रहे थे हमको, तो एक नए डॉक्टर भाई आए थे तो उनको भी दिया। उनको ये नहीं पता था कि हमें देना है, तो वो थैंक यू कर रहे थे। तभी हमको भी पता चला कि ये यहाँ की सिस्टम है कि जब भी कोई कहीं बाहर जाता है तो उसे मिश्री, इलायची और बादाम दिया जाता है। तो बाबा ने कहा कि इस सीजन के लिए ये तुम्हारा होमवर्क है, जैसे कोई बाहर जाता है, विदाई लेता है, तो ये तीन चीजें दी जाती है, तो इस सीजन के लिए तुम भी तीन चीजों को छोड़ दो। तो सारी मूर्ति में बहुत सारी तीन तीन बातें समाई हुई है। सुशील भाई ने तो बहुत बड़ी लिस्ट बना दी है, उसमें से कुछ बातें हम लेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा बाबा ने, पहले तीन, स्नेही, सहयोगी और साथी। बाबा किन को देख रहे हैं? उनको जो स्नेही है, उनको जो सहयोगी है, उनको जो साथी है। और साथी की तो बहुत बड़ी परिभाषा दी है। तो बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जो सहयोगी है, साथी है। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। स्नेही है अर्थात प्यार है बहुत। सहयोगी है, किस बात में सहयोगी? फॉलो फादर करने में। किस बात में सहयोगी? उसके हर कार्य में सहयोगी, स्वयं के सहयोगी, यज्ञ के सहयोगी, सेवा में सहयोगी, विश्व सेवा में सहयोगी, स्थूल सेवा में सहयोगी, मनसा सेवा में सहयोगी, हर प्रकार से, तन से सहयोगी, धन से सहयोगी, मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में सहयोगी। तो सहयोग, इस पर भी मूर्तियां चली है, सहयोग की शक्ति। आगे बाबा ने कहा यूनिटी के बारे में, तुम्हारी यूनिटी है पर कोई दूसरा डिसयूनिटी दिखाए तो क्या करो? तुम अपनी यूनिटी में रहो, क्योंकि दूसरा अगर मारे पर हम कुछ ना करें तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए यूनिटी बल है, संगठन। तो हम कौन सी आत्माएं हैं? वो जो स्नेही है, वो जो सहयोगी है, और वो जिन्होंने बाप को अपना साथी बनाया है। तो ये सबसे पहले तीन है आज की मुरली में। दूसरा, इसलिए क्या गायन है? शिव जयंती की, ब्रह्मा जयंती और ब्राह्मण जयंती, ये उदाहरण दिया बाबा ने। उधर क्या दिखाते हैं? जो साथी में है, आगे साथी अर्थात यहां पर फिर से तीन बातों में साथी, हर कदम में, हर संकल्प में, हर बोल में साथी। भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? हनुमान जी। और तुम क्या दिखाते हो? हम करके नहीं दिखाते, ऐसा अनुभव करके दिखाते हैं कि वो हमारे साथ है। तो साथी किस किस किन किन बातों में साथी है? संकल्प में साथी, ये बड़ी ऊंची अवस्था है। हर संकल्प में भगवान साथी, हर बोल में भगवान साथी, हर कर्म में भगवान साथी। तो साथी की परिभाषा दी है, साथी अर्थात ये। और किस में फॉलो फादर? संकल्प, बोल, कर्म में, ये अगला। और जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और वैसे ही कर्म होंगे। तो कर्म का आधार स्थिति, और स्थिति का आधार स्मृति, और स्मृति का आधार, स्मृति का आधार हमारे विचार, हमारे संकल्प। किस तरह के विचार दिन भर चल रहे हैं? विरोध के हैं, किसी को गिराने के हैं, या खुद के प्रति हीन भाव है, निगेटिव है पॉजिटिव है, तुरंत निगेटिव निकलता है या पॉजिटिव निकलता है, किस तरह के विचार है। हिंदी में एक शब्द है संकल्प की रक्षा, क्या करना है, अपने संकल्प की सुरक्षा, रक्षा करना है, सिक्योरिटी ऑफ थॉट्स, क्योंकि विचार मलिन हो जाते हैं, अपने संकल्पों की रक्षा करनी है। इसके दो अर्थ है, पहला अर्थ जो विचार चल रहे हैं उनकी रक्षा, और दूसरा संकल्प अर्थात दृढ़ संकल्प, जो संकल्प कर लिया अब उस संकल्प, संकल्प अर्थात कोई एक निर्णय, कोई एक डिसीजन, कोई एक प्रतिज्ञा, प्रण, जो प्रण ले ली, जो प्रतिज्ञा कर ली, जैसे दिखाया है इतिहास में कि किसी देवता के सामने अगर कोई प्रतिज्ञा कर लेता है राजा, तो उसी देवता से कहता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे संकल्प की तुम रक्षा करना, अब ये प्रण तो ले लिया है पर अब तुम मेरे संकल्प की रक्षा करना। तो संकल्प की रक्षा में दो आते हैं, एक तो प्रतिज्ञा की रक्षा और दूसरा विचार, जो विचार है जो चल रहे हैं उनकी रक्षा, सुरक्षा के घेरे में हो सारे संकल्प। सारे संकल्प कहां हो, चौक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा के घेरे में सारे संकल्प हो, क्योंकि माया का आक्रमण किस पे होता है, सबसे पहले संकल्पों पर, और फिर वो संकल्प स्मृति बनते हैं, बार बार वही संकल्प, वही याद, उसी से स्मृति का निर्माण होता है, स्मृति से स्थिति बनेगी, और स्थिति से फिर कर्म। कर्म तो बहुत बाहर की चीज है, बहुत ही बाहर का आवरण है, जो बाहर दिख रहा है उसके पीछे इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी सूक्ष्म चीजें हैं, जो कुछ हलचल हो रही है, यहां हलचल हो रही है, और फिर धीरे धीरे यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां आई, और फिर आखिर में कर्म में आई। हमने सोचा ये करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, पर वो उसने जो कहा, उसने जो बोला, उसने जो किया, उसके पीछे बहुत कुछ समाया हुआ था, अचानक कुछ भी नहीं निकलता है, यहां से निकला है सब कुछ। तो स्थिति अगर डगमग हो रही है, शायद स्मृति, शायद कर्म अगर ठीक नहीं हो रहे तो शायद स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है। और हर एक की स्थिति का पता, हर एक को अपनी स्थिति का पता है, बाकी दूसरों की क्या स्थिति है, दूसरे क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम कभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि स्थिति बहुत सूक्ष्म चीज है, कुछ दिखाई नहीं देती है। तो हम, हमारी अपनी स्थिति का ठिकाना नहीं, तो हम किसी और की स्थिति के ऊपर कुछ भी टीका टिप्पणी, किसी भी प्रकार का की चर्चा विवरण न करें, हमें पता नहीं किसी की क्या स्थिति है। तो कर्म से पहले स्थिति, और स्थिति से पहले स्मृति, स्मृति से पहले भी संकल्प विचार, इसलिए अपने संकल्पों की रक्षा करनी है। कहां जा रहे हो, किस ओर भटक रहे हैं, किस ओर कौन उसको खींचता है, क्यों यहां वहां जाते हैं, अगर जा रहे हैं तो उनको जबरदस्ती भी पकड़ के नहीं लाना है, उसको समझना है कि क्या उसकी इच्छा है, क्यों ऐसा उसने किया, क्या उसको चाहिए था। तो अपने ही आपको समझना, यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो पहला स्नेही सहयोगी साथी, दूसरा शिव जयंती, ब्रह्मा जयंती, ब्राह्मणों की जयंती, तीसरा साथी अर्थात हर कदम में, हर बोल में, हर संकल्प में साथी, उसके बाद में कर्म संकल्प बोल में फॉलो, उसके बाद में स्वस्थिति, स्मृति, स्थिति और कर्म, उसके बाद में ब्राह्मण अर्थात विजयी, चैलेंज करने वाले, पहले फ्रेंड थे माया के, तो पहले माया के फ्रेंड, फ्रेंडशिप विद माया, फिर बाप से फ्रेंडशिप और फिर वापस माया से फ्रेंडशिप। पुराना दोस्त है ना, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, पुराने दोस्त है तो, दोस्त है तो ज्यादा प्यार होता है, बहुत गहरा प्यार होता है, जिगरी यार, तो जिगरी यार ही है। तो पहले माया से फ्रेंडशिप, फिर बाप से फ्रेंडशिप, फिर बाप को तलाक और फिर पुराने दोस्त याद आ जाते हैं कि तू कहां था, कहां गुम हो गए थे। बाबा ने कहा तुम क्या करते हो, माया को चैलेंज करते हो, माया से तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं है, माया से दोस्ती नहीं है, और जिसके साथ हमारी दोस्ती नहीं है उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते, उखड़ा उखड़ा, और जिसके साथ हमारी दोस्ती नहीं है उसके साथ हम क्या करते, वो अगर हमारे पीछे पीछे आना चाहे तो हम रास्ता बदल देते, और जिसके साथ दोस्ती नहीं रखनी है हमको, बहाना, और क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और क्या करेंगे, हाँ भगा तो नहीं देंगे क्या करेंगे, जिसके साथ दोस्ती रखनी नहीं है साफ, अच्छा साफ कहने में तो खतरा है, और वो मनाने लग जाएगा, पीछे पड़ जाएगा, फिर तो क्या करेंगे, फिर वो कहेंगे कि मेरे सॉरी, मेरे से कुछ गलती विलती हो गई तो माफ कर दो, तो तो पहले तुम्हारी माया से फ्रेंडशिप थी, अभी तुम्हारी उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं है, और जिसके साथ दोस्ती नहीं रखनी है फिर उसके तरफ देखना भी क्या, विकारों से दोस्ती रखनी ही नहीं। अगर किसी और में भी भूत प्रवेश है तो क्या कहा उस दिन, उसके सामने से हट जाओ। अगर किसी में मोह दिख रहा है, हम में उसका मोह है और उसके सामने हम खड़े हो जाए, खड़े होना अर्थात सामना करना, खड़े होना अर्थात उधर से आया, कभी वो आएगा कभी उसका मैसेज, एक ही है दोनों, कभी उसकी याद, वो भी खड़े होना है, उसकी याद आ गई, वो तो है नहीं परंतु उसकी याद आई, वो अर्थात वो सामने खड़ा हुआ है। तो बाबा ने कहा है उसके सामने खड़ा होना अर्थात वो भूत इधर से इधर प्रवेश कर जाएगा, फिर जो भावना उसमें वही हम में भी उत्पन्न होगी, खींचेगी वो आत्मा हमको। तो माया को तुम जीतते हो तो क्या बनते हो, क्या मिलता है तुम क्या बनते हो, विजयी, और फिर क्या मिलती है तुमको, विजय माला। तुम चैलेंज करने वाले हो, विजयी बनने वाले हो, और विजय माला तुमको मिलने वाली है। तो ब्राह्मण अर्थात माया को चैलेंज करने वाले, चैलेंज अर्थात चुनौती, और किसको चुनौती दे रहे हैं, किसको ललकार कर रहे हैं, वो बहुत पावरफुल है, जिसका राज्य सारी दुनिया पर है, बड़े बड़ों को उसने हब कर लिया है, यहां से भी बाप के राज्य में प्रवेश कर बाप के अनन्यों को भी पकड़ कर ले गई है और अपना मुरीद बना के रखा है, ऐसी शक्तिशाली है वो। फिर भी हमने चुनौती दी, ललकारा उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कितना सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद सदा हमेशा अलर्ट है। माया कभी बेहोश होती है क्या? कभी नहीं, अखंड ज्योति है माया, एक सेकंड भी नहीं सोती है, वो कर्तव्य निष्ठ है, टाइम वेस्ट नहीं, इतना एक्यूरेट है, रावण की जो भी मर्यादा है जरा भी उसका उल्लंघन नहीं करती है फॉलो रावण फॉलो माया, उसे सीखना चाहिए इतनी अलर्टनेस। और जो शत्रु बहुत सावधान होता है उस पे वार नहीं करना चाहिए, जो बहुत सावधान है। तो यहां तो बाबा कह रहे तुम चैलेंज करो, कितनी बड़ी बात है। तो वो जितना अलर्ट है उससे हमारी अलर्टनेस बहुत ज्यादा गुना चाहिए। तो ये बात यहां पर कही बाबा ने। उसके बाद में आगे झंडा प्रत्यक्षता, क्या करते हो, झंडा लहराते हो तो क्या होता है, गीत गाते हो और फिर फूल गिरते हैं। तो झंडा कौन सा, रूहानी बाप के प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले हो तुम। फूल कौन से गिरते हैं, गीत कौन सा गाते हो, सबका एक बाप गति सदगति दाता एक बाप, ये गीत गाते हो। और फिर फूल कौन से गिरते हैं, सुख शांति का वर्षा, ये फूल गिरते हैं ऊपर से। तो भगवान की प्रत्यक्षता, ये झंडा गाड़ना है। कहां पर गाड़ेंगे, हर दिल हर आत्मा की छाती में ये झंडा गाड़ना है। बाप की प्रत्यक्षता माया की छाती में भी गाड़ दो, बाप की प्रत्यक्षता का झंडा, और फिर गीत भी गाओ और फिर फूलों की भी वर्षा होगी। जिस दिल में ये झंडा गड़ा हुआ होगा वहां पर अपने आप सुख शांति होगी, नहीं तो नहीं। तो ये एक बात कही। उसके बाद में अगली पॉइंट, फिर बाबा ने विघ्नों के बारे में कहा। क्या क्या कहा विघ्नों के बारे में, एक तो स्वयं विघ्न स्वरूप ना हो, दूसरा विघ्नों से घबराना नहीं है, और आगे एक जगह कहा विघ्न स्वरूप खुद नहीं बनना है, खुद विघ्नों को के वश नहीं होना है, विघ्न स्वरूप नहीं बनना है, विघ्नों से घबराना नहीं है, और दूसरों के लिए भी विघ्न नहीं बनना है। ये तीन चार बातें कही, इसको कहते हैं निर्विघ्न, ऐसा निर्विघ्न बनना। और निर्विघ्न बनना केवल अर्थात केवल प्यूरिटी में निर्विघ्न नहीं, जैसे तुम गाते हो कि जब से आए तब से अब तक संकल्प में भी जो प्योर रहे वो हाथ उठाओ, वैसे केवल प्यूरिटी में निर्विघ्न नहीं बनना है। किस किस में निर्विघ्न बनना है, छह बातों में निर्विघ्न बनना है। तीन तीन ले लो इसको वापस। स्वस्थिति, संबंध संपर्क, गुण, ये गुण एक्चुअली नीचे बोला है पर इसको ऊपर जोड़ देते क्योंकि यहां तीन बातें एक साथ बोल दी है, प्यूरिटी याद सेवा, इन तीनों में निर्विघ्न, और फिर वापस ये सेवा वाला गुण वाला इधर। और गुणों में भी कौन सा गुण, दर्पण कौन सा है, संतुष्टता दर्पण है, सर्व गुणों का, गुणों की धारणा का दर्पण है संतुष्टता। तो केवल प्यूरिटी ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होगा। कितनी नई बात बोली है, प्यूरिटी में निर्विघ्न है, बहुत अच्छी बात है, पर निर्विघ्न किस में रहना है, संबंध संपर्क में भी निर्विघ्न, स्वस्थिति में भी, स्थिति में स्वस्थिति में, और गुणों में भी निर्विघ्न, संतुष्टता में भी निर्विघ्न। और यहां पर बताया प्यूरिटी याद, अव्यभिचारी याद, और सेवा में भी निर्विघ्न। ये चिंतन करना ही निर्विघ्न बना देता है आत्मा को, केवल सोचना, अर्थात हम निर्विघ्न होने के उस पथ पर निकल पड़े, मुझे निर्विघ्न बनना है। केवल ये सोच ही कि स्वस्थिति भी निर्विघ्न है, संबंध संपर्क भी निर्विघ्न है, और सेवा भी निर्विघ्न है, गुणों में भी निर्विघ्न है, हर बात में निर्विघ्न है, कहीं पर कोई विघ्न नहीं, स्थिति निर्विघ्न अचल अडोल। स्थिति को हिलाने वाली क्या होती है, परिस्थितियां, परिस्थितियां हिला देती है। तो ऐसे समय में क्या सोचना है, ड्रामा की पॉइंट्स याद करनी है। महान जासूस शर्लॉक होल्म्स बहुत प्रसिद्ध जासूस है विदेश का, और उसका दोस्त हमेशा उसके साथ दिखाया वॉटसन, तो वो दोनों बहुत सारी केसेस मिलकर हल करते, जो बहुत मुश्किल इस तरह की बातें होती वो दोनों मिलके हल करते। और हर बार जो शेरलॉक होम्स है उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो बहुत इतना शार्प होता है, एक एक चीज को वो पकड़ लेता है और बराबर जो खूनी है अपराधी है उस तक पहुंच जाता है, छोटे से छोटे सुराग से उसका एक एक चीज वो इतना सूक्ष्म रीति से देख लेता है कि। तो दिखाया गया है कि दोनों एक बार एक फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म में एक दृश्य आता है घुड़सवारी का। तो वो वॉटसन कहता है ये जो काला घोड़ा है ये जीतने वाला है क्योंकि सबसे आगे वही है, तुम क्या सोचते हो? शेरलॉक होम्स कहता है मुझे लगता है वो जो सफेद घोड़ा है ना वो जीतेगा, और सफेद घोड़ा तो सबसे पीछे है और आगे तो काला घोड़ा है। तो वो कहते चलो देखते हैं। वो फिल्म आगे बढ़ती है और देखते हैं धीरे धीरे वो काला घोड़ा आगे आ जाता है और जीत जाता है, वो सफेद घोड़ा आगे आके जीत जाता है। तो वॉटसन उससे पूछता है माना कि तुम बहुत बड़े जासूस हो, ख्यातिवान, बहुत प्रसिद्ध, पर तुम्हें ये कैसे पता कि ये जो सफेद घोड़ा था वो आगे चला जाएगा? बताए उसमें पता रहने का क्या, ये मूवी मैंने कई बार देख चुका हूं, ये फिल्म मैंने कई बार देखी है, और जब फिल्म को कई बार देखी है तो क्यों आशा बांधे बैठे हो कि ये काला घोड़ा जीतेगा? जब देख ली है फिल्म कई बार फिर क्यों सोच रहे हो कि काला घोड़ा जीतेगा, जब जीतना है सफेद घोड़े को, यही नियति है। तो जिसने कई बार फिल्म को देखा है उसके लिए कुछ आश्चर्य नहीं है, उसे सब पता है, इसलिए उसकी स्थिति भी कैसी है, अच्छा लडोल है। तो हमेशा यही सोचना है कि ये जो फिल्म चल रही है ये अभी तो कल ही तो देखी थी, आज वापस देख रहे, या एक साल पहले देखी थी, ये मत सोचना 5000 ये सब नहीं लाना बीच में, कल्प कल्पांतर ये वाले पॉइंट नहीं लाना, अभी 2 साल पहले देखी थी अभी रिपीट हो गया, अच्छा ये दृश्य तो देखा हुआ है, तो ये फिल्म रिपीट हो रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है, हम देख चुके हैं, ये पहले भी ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है और हमें पहले से ही पता था ये होने वाला है, बस खाली बताना मत लोगों को पहले से, होने के बाद अंदर ही सोचना हाँ ये तो मुझे पता था, ये भी कितनी अच्छी, कितना अच्छा अभ्यास है, कुछ भी होने के बाद क्या सोचना, ये मुझे पता था होगा, पर खाली दूसरों को मत बताना बस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हर सीन जो हो रही है मन में एक संकल्प लाना है चुपके से, मुझे पता था ये होने वाला है, तो अच्छा डोल रहेंगे। तो कहां थे हम, ये पॉइंट पर, निर्विघ्न, निर्विघ्न अर्थात स्वयं विघ्नों के वश नहीं, निर्विघ्न अर्थात बाबा ने यहां और एक बहुत अच्छी बात बताई है विघ्नों के लिए, कौन सी, बहुत नई बात बताई है विघ्नों के बारे में, जो हिल जाते हलचल में आते हैं उनको क्या हो जाता है, रजिस्टर पर दाग, और जो विघ्नों से सीखते हैं पाठ पढ़ते हैं वो क्या बन जाते हैं, पक्के बन जाते हैं, और वो कैसे बनेंगे, लगन में मगन रहने से। तो जो लगन में है वो क्या करेंगे, विघ्नों से पाठ पढ़ेंगे कि ये विघ्न आया, बहुत बड़ा विघ्न आया, इतना बड़ा विघ्न कि जीवन में आज तक ऐसा विघ्न नहीं आया था, किसी ने इतना बड़ा कलंक लगा दिया, इतना बड़ा विघ्न, आज तक ब्राह्मण जीवन ही हिल गया अंदर से, जो कुछ हुआ बाबा कह रहे उससे सीखो और अब पक्का हो जाओ तो फिर निर्विघ्न, इसको कहेंगे निर्विघ्न, यह है निर्विघ्न की परिभाषा। और दूसरा है विघ्न आए हलचल में आ गए और वो क्या हो गया, रजिस्टर में दाग, और विघ्न ना आएंगे ऐसा तो बाबा ने कभी कहा ही नहीं है, आज तक चाहे कितना भी बड़ा कोई योगी बन जाए, तपस्वी बन जाए, हर एक को विघ्न आने हैं, क्योंकि किसने हमने इतने जन्मों में क्या क्या किया है, हमें पता नहीं कब कौन सा विघ्न आएगा। अचानक से बीमारी, अचानक से शारीरिक व्याधि, अचानक से शरीर का कोई हिसाब किताब, अचानक से मित्र संबंधियों से विघ्न। अब तक जो साथी थे, सहयोगी थे, प्रेमी थे, दोस्त थे, अचानक शत्रु बन गए। अचानक धोखा दे दिया किसी ने, जिसके ऊपर पूरा विश्वास किया था, पर भी अंदर क्या सोचना, मुझे पता था। ये वाक्य बड़ा पावरफुल है, मुझे पहले से ही पता था, खाली मैंने तुमको बताया नहीं था ताकि तुम हिल ना जाओ, बाकी पता तो मुझे पहले से ही था। ये ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होगा। तो निर्विघ्न बनना है, केवल प्यूरिटी में नहीं, स्वस्थिति में, संबंध संपर्क में, सेवा में, गुणों में, प्यूरिटी में, याद में, अव्यभिचारी याद। और विघ्न आए भी तो सीखना, पक्का होना, पाठ पढ़ना, हिलना नहीं हो और निर्विघ्न हो जाना, लगन को नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात बताई, अगर जो हिल जाते हैं तो इस पिटाक, इसलिए हिलना नहीं है, चाहे कैसे भी कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए। और विघ्न हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है, जितना विघ्न हमको सिखाते उतना और कोई नहीं, कोई मुरली, कोई किताब नहीं सिखाती। मुरली में ये तो लिखा है क्या करना है, पर वो एक्चुअल कौन सिखाता है, वास्तविकता में विघ्न आता है तब हम सीखते हैं। मुरली की बातों का सत्यापन विघ्नों के द्वारा होता है। अब आ जाओ आगे होमवर्क। तो जैसे वो तीन मिश्री, बादाम और इलायची देते हैं, वैसे अब तुम भी क्या करो, तीन चीजों को छोड़ो। एक चीज की चर्चा पिछले संडे की मुरली में हो गई, कौन सी, लगाओ, सूक्ष्म लगाओ, सूक्ष्म सहारा, अच्छा लगता है, निमित्त है, इससे वृद्धि होती है, सभा संस्कार मिलते हैं इसके साथ, यही हीन भावना लाता है, यही क्या करता है, गिराता है, गड़बड़ करता है, यही क्या करता है, ही अर्थात दाल में काला, सब अच्छे है, सब विशेष है, सबसे रूहानी प्यार, किसी एक से विशेष हो गया फिर गिरावट चालू। वो भी लगाव है, वो भी झुकाव है। उतना समय बाप को याद नहीं किया, उतने मिनट बाप की याद नहीं रहा, याद की लिंक टूट गई, निरंतर में अंतर पड़ गया, निरंतर में अंतर पड़ गया। तो लगाव की चर्चा लास्ट संडे, कर्मातीत अर्थात बंधन मुक्त, कर्मातीत अर्थात जीवन मुक्त, कर्मातीत अर्थात कर्मों के बंधन से मुक्त, एवर रेडी, कर्मातीत अर्थात चौथा योग युक्त, चौथा योग युक्त। तो योग युक्त, जीवन मुक्त, बंधन मुक्त और एवर रेडी, ये चार परिभाषा दी। ब्रह्मा का उदाहरण दिया था, फलानी को याद किया गया, किसी को याद नहीं किया, नष्ट हो गया। तो लगाव की चर्चा कर चुके, तो इस मुरली में दो चर्चा हुई है, एक तो तनाव और दूसरा कमजोर स्वभाव। तो तनाव का कारण क्या है, तनाव अर्थात खींचातान, एक तो अपने आप से या तो दूसरे के साथ, और कितनी सारी मैं की लिस्ट बताइए। तनाव का कारण ही क्या है, स्ट्रेस का कारण, मैं की मटकी फोड़ी और दिल मक्खन मक्खन हो गया। तो मैं योगी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं समझदार हूं, मैं ये मेरी सेवा है, मैं होशियार हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, और मैं ही कर सकता हूं, मैंने ये किया, करूंगा, और मैं करता हूं, मैंने किया, मेरा ये, मेरा वो, मेरी सेवा, मेरा डिपार्टमेंट, किससे पूछ के किया, नहीं किया, तुमको इतना तो समझना चाहिए, अभी हर बात बतानी है क्या, इतने समय से रहते हो, और किया तो किससे पूछ के किया, हमसे भी ना भी पूछे करने लगे आजकल। हम बहुत पुराने, तुम अभी अभी आए तो। मैं इससे क्या होता है, तनाव स्ट्रेस, तो तनाव को जन्म देता है मैं। बाबा ने कहा इस मैं को थोड़ा हटा दो, मैं है तो तनाव है। जैसे इसके पहले भी सुनाया था जेन मास्टर बोकुजो, वो उसका जो शिष्य होता है, जैसे ही वो अपने उस शिक्षा कक्ष में प्रवेश करता है बोकुजो, तो उसकी जो सीट है गुरु की, वहां पे एक शिष्य बैठा हुआ है। डिपार्टमेंट में हमारी सीट में हम एंट्री करें और देखें कोई जूनियर बैठा हुआ है, तो जेन मास्टर तो वो जैसे आता है उसको देखते हैं अपने शिष्य को, नो रिएक्शन, चुपचाप वो जो स्टूडेंट्स की पंक्ति है उसमें जाके बैठ जाते हैं। तो शिष्य पूछता है आपको गुस्सा नहीं है मैं यहां बैठा था तो? बोले गुस्से की क्या बात है, अब तक मैंने तुमको सिखाया, अब तुम मुझे सिखाओ, कुछ तो रहा होगा ना मुझ में भी, कुछ तो कमी होगी। तो जहां मैं है वहां बहुत तनाव है, और जहां मैं नहीं वहां तनाव नहीं। मैं को गिराना अंतिम पुरुषार्थ है वैसे तो। काम क्रोध लोभ मोह सब चला गया, मैं बचता है फिर भी, मैंने ये सबको किया। ये जो मैं है ना, ये रावण का प्रतीक है। अब तक जितने थे वो सबको सबने मार दिया, हनुमान ने किसको मारा, अंगद ने भी किसको मार दिया, लक्ष्मण ने भी मार दिया एक दो को, पर रावण को मारने के लिए तो राम को ही आना है। रावण अर्थात मैं, अहंकार। जब राम स्वयं आते हैं तो ही अहंकार जाता है। ज्ञान योगी जीवन में भी सारे विकार चले गए फिर भी मैं रह जाता है, उसके लिए तो स्वयं भगवान का ही आशीर्वाद और कृपा चाहिए, तो ही जाता है वो, नहीं तो नहीं जाता। अंतिम तक रहता है, मैंने ये सब किया, मैं ऐसा करता हूं, तो ये रह जाता है। तो तनाव, उसके बाद में दूसरा बताया, तीसरा कमजोर स्वभाव। व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो लेकर चलता है। लास्ट संडे की मुरली में था कि जितनी लगन होगी, लगन उतनी क्या होगी, एकाग्रता, जितनी एकाग्रता होगी उतनी क्या होगी, परखने की शक्ति, और परखने की शक्ति है तो ही अपनी कमजोरी को परख सकेंगे, और तो ही पता चलेगा कि ये भी बंधन है। नहीं तो स्थूल बंधन तो हटा दिए रस्सी है, पर ये जो रॉयल धागा, सोनी हिरन, ये दो शब्दों का प्रयोग किया था लास्ट संडे, ये रह जाएंगे। यहां पर भी अपने स्वभाव को जानना ये बड़ा मुश्किल काम है। जैसे एक बहुत कंजूस व्यक्ति मर रहा है और मरते मरते कहता है बा जा बा जा बा जा, ऐसे कहते हैं वो, उसके बेटे बहू सब कुछ है, सारे है, तो सोचते क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, शायद कह रहा है वो जो बक्सा जो है ना झाड़ के नीचे दबा हुआ है, बा झा बा झा झा बा, ऐसा कह रहा है। बक्सा मतलब संदूक, सोने से हीरे मोतियों से भरी हुई, पर हमारे पास तो इतने सारे झाड़ है, कहां ढूंढे अभी, कौन से झाड़ को खोदे के पास खोदे। तो वो बिल्कुल मरने को है, डॉक्टर वहां खड़ा है, डॉक्टर कहता है एक इंजेक्शन है, अगर मैं अभी दे दू तो ये 2-3 मिनट और जिएगा, पर बहुत महंगा है, पर बाद में मर जाएगा। सारे बेटे और बहू और सब सलाह करते, बोलते कम से कम बोलने तो, ये क्या बोल रहा है पता तो चले, ये कौन सा बक्सा है और कौन सा झाड़ है। वो कहते डॉक्टर दे दो, डॉक्टर कहता है पर मरने की, जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। वो कहता है चलेगा पर कुछ थोड़ी सांसें और बढ़ जाएगी। तो इंजेक्शन दिया जाता है और फिर थोड़ा सा पावर आ जाती है, कहता है अरे मूर्खो यहां क्या कर रहा हो, देखो वो बछड़ा वो झाड़ू को खा रहा है। बछड़ा जो है झाड़ू चबा रहा है। झाड़ू को हटाओ पहले। तो वो जो स्वभाव जीवन भर था वो अंत में प्रकट हुआ। वैसा ही दूसरा भी एक ऐसा ही उदाहरण है। वो कहती है ये आपका पहला बेटा है शंकर, ये दूसरा बेटा विष्णु, ये तीसरा बेटा नारायण, ये आपकी बहू बेटी राधा। तो वो कहता है अरे सब यहां है तो दुकान पर कौन है फिर? वो फिर मरता है। तो स्वभाव आज तक चलता है, बड़ा मुश्किल बदलता है स्वभाव। और बदलना है तो बड़ी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए परिवर्तन के लिए। बाबा ने इसलिए कहा कमजोर स्वभाव, दिल शिकस्त होना, दुखी होना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन का भी उदाहरण दिया है। अच्छा है पर यह सोचता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे में कुछ भी अच्छा नहीं है, यह सोचना अपने प्रति हीन भावना है। सब लोगों को देखते ही ये अच्छा बोलता है, ये अच्छा करता है, इसमें ये एक स्किल है, इसमें वो गुण है, सब कितनी अच्छी अच्छी सेवाएं करते हैं, मैं नहीं करता हूं। हीनता के भाव है। और हीन भावना कभी भी ऊपर नहीं उठने देगी और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करने देगी। स्व के प्रति हीन भावना, खुद का खुद शिकार कर रहे, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। जो इधर मारने वाला तीर है वो उल्टा है, अपने आप को ही घायल कर रहे। कोई जा रहा है सीनियर, उसको हमने ओम शांति किया, उसने देखा ही नहीं, अब वो अपने काम में बिजी होगा। उसको ये व्यक्ति सोचता है देखा जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ सब ऐसा ही करते, कोई मेरे तरफ देखता भी नहीं, कोई मेरे से पूछता नहीं, मेरे से बात नहीं करता, मेरे में गुण कम है, मैं कुछ लायक नहीं हूं, बहुत हीनता। ये मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे है, हम तो कम पढ़े लिखे है, हम बुद्धू है। और जिनमें हीन भावना होती है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन होता है, बाहरी स्वरूप में फिर वो दिखावा भी करते हैं बहुत। ये एक दूसरा पहलू है पर्सनैलिटी का। बाहर से वो दिखाना चाहते कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पर अंदर से हीनता के भाव है भरे हुए। या फिर जो ज्यादा दिखावा करता है उसमें वो हीनता के भाव छिपे हुए होते हैं। उसको ढकने के लिए ही बाहर से ये दिखा रहा है कि मैं कितनों को जानता हूं, कितने मेरी पहचान है, पर अंदर से सूक्ष्महीन भाव है। तो हीनता के भाव। तो स्वभाव, दूसरा तनाव, और पहला बताया लगाव। बाबा ने कहा इस वर्ष का ये पुरुषार्थ है, इन तीन चीजों को छोड़ो, इन तीन चीजों को छोड़ दो। और तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए फिर? जो बाप का स्वभाव और तुम्हारा स्वभाव, उसमें तीन बातें बताई, दूसरों को उठाने वाला, निर्माणता का और मधुरता का स्वभाव, और रहम दिल, बाप जैसे रहम है सबके प्रति रहम, ये तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। कल्याण, सबका कल्याण हो जाए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी का कल्याण हो जाए। इसमें और एक बात शायद आगे बताई है, दूसरों को आगे बढ़ाना अर्थात खुद को आगे बढ़ाना, ये भी कितनी नई बात है। त्याग के भाग का जो बोल हुआ ना, त्याग के भाग्य का भी त्याग, ये क्या है इसका अर्थ? त्याग के भाग्य का त्याग अर्थात त्याग के भाग्य का त्याग, त्याग से जो भाग्य प्राप्त होगा। जैसे ब्रह्मा ने त्याग किया फिर भाग्य मिला, और भाग्य के कारण क्या हो रही है? स्तुति हो रही है, महिमा हो रही है। पर जब महिमा हो रही है तो ब्रह्मा क्या कह रहा है? ये मैंने नहीं किया, उसको याद करो, मेरा फोटो मत निकालो, करण करावन वर हो है। ये ब्रह्मा को याद करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुरलियों में ऐसी लाइन आती है, एक मुरली में तो ऐसा भी था, ब्रह्मा को याद करोगे तो नर्क में जाओगे। पर ये प्रश्न है, ये कौन कह रहा है फिर? ये ब्रह्मा खुद कह रहा है, ये शिव बाबा नहीं कह रहे, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि इसको मिलोगे तो खाक भी नहीं मिलेगा तुमको। तो त्याग का भाग, उस भाग्य का भी त्याग, इससे क्या होगा? डबल डबल महादानी, कौन सा क्या होगा? डबल, इससे महादानी बन जाएंगे, और डबल ऑफर क्या है? डबल कुछ तो डबल होगा, क्या होगा? महादानी, डबल महादानी है। ओके, डबल महादानी बन जाएंगे, ऑफर भी है ना कुछ? तो ये तीन बातें। उसके बाद में अगली तीन बातें जो धारण करनी है वो कौन कौन सी है? बैलेंस, ब्लेसिंग और ब्लिसफुल लाइफ। किसमें बैलेंस? इसका तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये बैलेंस का, पर बहुत सारे बैलेंस है। यहाँ बाबा ने दो बैलेंस बताया, याद सेवा और रमणीकता और गंभीरता। कहाँ रमणीक, कहाँ गंभीर, क्योंकि कभी कभी रमणीकता का गुण बहुत नुकसान भी करता है, गंभीरता का थोड़ा कम करता है। पर रमणीकता जो है ये बाह्यमुखी बनाता है व्यक्ति को, और बाह्यमुखी जब व्यक्ति बन जाता है बहुत ज्यादा बोलता है, और जब बहुत ज्यादा बोलता है तो ऐसी भी बातें बोल देता है जो बोलना नहीं चाहिए, अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। इसके लिए रमणीकता, बाबा ने दोनों का बैलेंस कहा रमणीक, कहा गंभीर। पर दोनों में से अगर किसी को चुनना हो तो क्या चुनेंगे? पहले रमणीकता। उस बैलेंस के लिए दोनों चीजें समान चाहिए, अभी गंभीरता है ही नहीं, रमणीकता ही है पूरी। तो बैलेंस अर्थात उसको कम करना पड़ेगा, इसका डोज बढ़ाना पड़ेगा ताकि लेवल हो जाए। और गंभीरता का संबंध है बोल से। व्यक्ति सबसे ज्यादा विकर्म किससे करता है? बोल से करता है। इसके लिए योगी आत्माओं के प्रति किसी की भी निंदा ना हो हमारे मुख से, क्योंकि ब्राह्मण बहुत महान आत्मा है और उसका बहुत बड़ा पाप है। जो जितनी योगी आत्मा है, जितनी महान आत्मा है, अगर ऐसी योगी महान आत्माओं की हमारे द्वारा निंदा होती है तो अक्षम्य अपराध है वो। इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत संभाल के चलना है योगियों के लिए। क्या है? हाँ, दूसरा ऑफर करे तो खींच। हाँ, दूसरा ऑफर करे जो सहज मिलता है उसमें भाग्य है, जो सहज खींचा था ना हो, मुझे मुझे मुझे, मेरा ये लो मेरा वो लो। अच्छा, मुझे भी बुला लो, मैं भी आता हूँ। आप जा रहे हो, मैं भी अपना थोड़ा गीत भी प्रेजेंट कर लूंगा। मुझे भी डांस वगैरह आता है थोड़ा सा, आपके थोड़ा क्लास के पहले थोड़ा डांस मैं कर लेता हूँ। वो कहेंगे नहीं नहीं टाइम नहीं, अरे थोड़ा सा एक एक आधा पांच तीन मिनट में हो जाएगा मेरा, मुझे भी थोड़ा चांस दे दो डांस करने का, गाने का। या मुझे कविता है मेरी, मुझे कविता सुनानी है, पीछे पड़ जाते हैं, मुझे कविता ही सुनानी है। ये हमारा बना हुआ है, वो भी रखना उधर, ये हमारा निकाला हुआ है, चिपका देना खुद ही। कहाँ थे? बैलेंस, गंभीरता। गंभीरता के गुण की बहुत कमी है, गंभीरता का गुण आना चाहिए। वो बाबा साहेब अम्बेडकर का जितने चित्र है हंसता हुआ एक भी नहीं है। अम्बेडकर का चित्र देखा होगा ना, उनको कभी किसी ने पूछा था आप हंसते नहीं हो क्या? उन्होंने कहा कि संसार में इतनी समस्या है, भारत की इतनी समस्या है, ये जब सब ठीक हो जाएगी ना तब मैं हंसूंगा। वैसा हंसना वो अलग है, खुशी वाला वो अलग, ये कोई दुख की निशानी नहीं है। पर व्यक्ति सीरियस है, गंभीर है, जैसे चाणक्य, कहीं हंसी मजाक उसका स्वभाव तो है परंतु वो गंभीर दिखाया है हर बार। कहा जाता है जीसस क्राइस्ट नेवर स्माइल्ड, नेवर लाफ्ड इवन वंस। जीसस क्राइस्ट अपने जीवन में एक बार भी नहीं हंसा जोर से, वो गंभीर था। वो प्यार सबसे करता था, बच्चों से तो बहुत प्यार करता था, सभी से, सबकी कितनी मदद की, चमत्कार दिखाया, सब कुछ किया, पर हंसना वो नहीं था उधर, क्योंकि वो स्थिति को कभी कभी नीचे ला लेता है हंसी। तो पहला बैलेंस, दूसरा ब्लेसिंग, कब मिलते हैं तुमको ब्लेसिंग? अमृत वेला। और तीसरा, ये दोनों होगो तो जीवन आनंदमय हो जाएगा, ब्लिसफुल। तो ये तीन, अगले तीन रियलिटी, रियलिटी अर्थात सत्यता, सत्यता सच तो विचो नच सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चाई होनी चाहिए। दूसरा रॉयल्टी, रॉयल्टी अर्थात बुद्धि का कोई भी छोटी छोटी बातों में झुकाव ना हो, जैसे रॉयल लोग होते हो नीचे का नहीं, गिर गया तो गिर गया जाने दो, हमारे पास बहुत है सोने का सिक्का, गिर गया जाने दो, हमारे पास बहुत सिक्के है, हम नीचे का थोड़ी उठाएंगे। वो कोई आप बता रहे थे ना एक बार विदेशी का, क्या पानी की बोतल गिर गई, गिरने दो अपनी, वो नहीं पियेंगे हम। दूसरी रॉयल संस्कार, रॉयल घराने के मतलब पैसे बहुत है हमारे पास, ये छोटे छोटे चीजों में हम नहीं जाएंगे। कोई चीज पसंद आ गई तो अपने सर्वेंट से नौकर से इशारे से कहेंगे, खुद जाके हाथ नहीं लगाएंगे, उसका भाव नहीं करेंगे, इतने में दे दो उतने में दे दो, जितना बोल दिया मुंह मांगा दाम ले लो, तो रॉयल आत्मा है। तो बाबा ने कहा बुद्धि छोटी छोटी बातों में न जाए, ये है रॉयल्टी, कपड़े वाली रॉयल्टी नहीं, ये रॉयल्टी बुद्धि वाली रॉयल्टी। तीसरा बताया यूनिटी, यूनिटी में भी एकता का बल, अगर कोई डिसयूनिटी दिखाता भी है तो तुम यूनिटी में रहो तो अपने आप वो भी आ जाएगा यूनिटी में, क्योंकि किसी भी संगठन को तोड़ने के लिए शत्रु हमेशा प्रयत्न करता है, क्योंकि संगठन के अंदर ही अगर दरारे अंगर कलह अंत कलह अंतर कलह पैदा हो जाए वो संगठन कमजोर हो जाता है, यही नीति रणनीति है ये, फूट और राज्य करो, फोड़ दो उसको अंदर से, टुकड़े टुकड़े कर दो उसको, एक दूसरे को एक दूसरे से लड़ा दो, वो लड़ते रहेंगे और फिर हम राज्य करेंगे, यही तो रणनीति है, षड्यंत्र ऐसी तरह रचा जाता है। तो साजिश, ये तीन बातें। उसके बाद में अमृतवेला बाबा बच्चों की तीन बातें देखते हैं, विशेषता गुण और सेवा। उसके बाद में अमृतवेला बाबा बच्चों को तीन बातें देते हैं, तीन आशीर्वाद, पालना, सहयोग, सहयोग पालना और वरदान, हाँ वरदान, स्नेह एक तो पालना है, स्नेह और वरदान की पालना, स्नेह सहयोग वरदान की पालना, ये तीन चीजें अमृतवेला बाबा देते हैं। यहां उदाहरण दिया मां का, मां क्या करती है बच्चे को साफ सुथरा करती है, तैयार करती है और फिर जाओ खेलो, खेलो पियो नहीं, खाओ पियो पढ़ो, मौज नहीं पढ़ो है, खाओ पियो खाओ पियो और मौज करो, खाओ पियो और पढ़ो। तो माँ जैसे करती है वैसे बाबा भी हमको सुबह सुबह शक्ति भक्त आत्मा में, और फिर कहता है जाओ, और फिर लास्ट के तीन पॉइंट, पलते रहो उड़ते रहो और चलते रहो, पलते रहो उड़ते रहो, पलना चलना और उड़ना। तो ये सारी शक्ति अपने अंदर कब भरनी है, अमृत वेला भरनी है। तो ऐसी टोटल बहुत सारी बातें हैं, तीन 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 मुरली की बातें। तो मुरली से क्या होमवर्क निकालेंगे, होमवर्क शुरुआत से लास्ट तक, या सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी रही मुरली की, जो एकदम नई लगी, जो आज तक नहीं सुनी थी, निर्विघ्न वाली। निर्विघ्न अर्थात हम खुद निर्विघ्न, स्वयं निर्विघ्न, दूसरों विघ्नों से घबराना नहीं, विघ्नों से सीखना, पाठ पढ़ना, पक्के रहना, दाग नहीं लगने देना और लगन में रहना और दूसरों के लिए विघ्न रूप ना बनना, ये निर्विघ्न की पॉइंट एकदम नई पॉइंट है। एक दूसरा, बाप को कैसे बच्चों पर नाज है, जो भाग्यवान है, जो योग्य है योगी है और भाग्यवान है, फिर तीन बातें। और पावरफुल पॉइंट कौन सी रही, और जो नई थी, एक तो विघ्न निर्विघ्न वाली थी और दूसरी संतुष्ट सर्व गुणों का दर्पण है, नई पॉइंट है ये, सभी गुणों की धारणा का दर्पण है ये एक। दूसरा, तीसरा स्वभाव, तनाव का कारण बताया मैं, अगर हम में अंदर तनाव चल रहा है ब्राह्मण जीवन में, तो विधि क्या है? झुक जाना, सिक सिक झुक झुक मरमर, झुक जाना, क्योंकि स्थिति की कीमत बड़ी है। स्थिति किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। उस व्यक्ति के सामने उस समय झुक गए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, झुक जाओ, क्योंकि स्थिति बच जाएगी। संकल्पों की रक्षा, संकल्प की रक्षा करनी है। और क्या पॉइंट थी? स्वभाव, अपने ही स्वभाव को समझना है, मेरा स्वभाव है क्या, अगर ये परिस्थिति आती है तो मैं किस तरह से प्रतिक्रिया करता हूं, क्या रिस्पॉन्ड है, क्या रिएक्शन है, रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, रिएक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और माया को चैलेंज वाली पॉइंट नहीं थी। और होमवर्क में क्या लेंगे, या जिस पर काम करना है, हर मुरली से ऐसी बातें निकालनी है कि जिस पर हमको बैठकर काम करना है, जो अभी तक हम में है नहीं, काम करना है उसके ऊपर। संकल्प में भी बाप को साथी बनाना, बोल में, संकल्प में, कर्म में, कर्म में तो पता है, पर संकल्प में उसको साथी बनाना। वो मैं और तुम, सारे भ्रम दूर हो जाते अगर तुम और मैं एक हो जाओ तो। और त्याग के भाग्य का भी भाग्य, यहां पर त्याग के भाग्य का भी त्याग, इसका अर्थ जब स्तुति हो हमारी तब क्या किया जाए। शैलेंद्र भाई, स्तुति हो रही है, बहुत ही महिमा कर रहे लोग, तब हमको क्या करना है? अंदर से कम 10 बातें बताओ जो हमको करनी है। बाप को क्या कर दो? जो आ रहा है उसको ऊपर भेज दे, एक। और वो ये भी हो सकता है, वो कह रहा है कि भाई तुम बहुत अच्छा बोलते, इसका मतलब शायद नहीं बोलते और उसकी इतनी भावना है हम में कि वो ऐसा चाहता है इसलिए बोल रहा है, जैसे बाबा करते, वही सेम योजना है उसकी, सेम स्ट्रेटेजी है। तो शायद ऐसा है कि वो बोल रहा है अर्थात मुझ में वो नहीं है, ये भी एक। दूसरा, तीसरा, कोई ज्यादा ही स्तुति कर रहा है, कोई शायद आपको क्या, हाँ वो आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन सिखा रहा है हमको, क्योंकि हमें तो महिमा करनी नहीं आती है। कोई दूसरा अच्छा काम करता है तो कहाँ महिमा करने की इच्छा होती है? कोई जाके कहे, कभी किसी को बोलते हैं, अच्छा तुमने अच्छा किया, हाँ ठीक है, अच्छा है। आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन उससे सीखना है हमको, हाँ ये भी अच्छा है। ज्यादा ध्यान नहीं देना है, करने दो, सारी दुनिया हमारे पीछे, हम उसके पीछे। और ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है उनकी बातों को, अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या क्या हूं मैं? वो कहेंगे तुम तो ये बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारा तो ये बहुत ही संयम बहुत अच्छा है तुम्हारा, अच्छा मेरा संयम और क्या क्या, और बताओ और क्या क्या है मुझ में, पता मुझे भी तो पता चले ना मुझ में क्या क्या है, तो आप ही तो बताओगे। टाइम है, चलो थोड़ा जाके आते हैं नकी राउंड। और बताओ, उसको टाइम कम देना है, उसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और अपने सूक्ष्म चेकिंग करना है, इसने जो बोला वो सही में है कि बस मियां मिट्ठू, अंदर एक बाहर दूसरा, खौफनाक, और तारीफ ही तारीफ किए जा रहा है कोई। हमको ये समझना है इस यज्ञ में कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, मेरी तारीफ हो रही है, अर्थात टीम की तारीफ हो रही है पूरे, क्योंकि मैं टीम का एक भाग हूं, मेरी नहीं हो रही है, ये सबकी है, सब इसमें इन्वॉल्व है, मैं अकेले कहां से आ गया? सब लोग अगर नहीं होते तो ये होता है कोई? वैसे एक ने कुछ, एक कुछ करता है क्या यहां पर? एक को हटाओ गिर जाएंगे, वो सबको हटा दो हम गिर जाएंगे। आई एम बिकॉज वी आर, मैं किस लिए हूं? क्योंकि हम सब है। उबुंटू उबुंटू उबुंटू, वो कहानी सुनाई थी ना उबुंटू वाली, तो उबुंटू 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 अर्थात मैं इस क्यों हूं? क्योंकि हम सब है। तो ये भी सोचना। और तारीफ पे तारीफ छोड़ ही नहीं रहे कुछ कुछ, तो इतने पे हमने सारा ये उपाय कर लिए, बाबा तुम्हारा है, पर फिर भी वो छोड़ नहीं रहा, हम क्या करें? बोलना यही माया है, समझ लेना, ये माया का ही रूप है, कोई पीछे ही पड़ा है, शायद अंतर मन में षड्यंत्र चालू है उसके, कुछ अभी निगेटिव वाली पॉइंट्स है, अभी निगेटिव पॉइंट्स चालू होती है यहां से, चार छिपा हुआ है, चाटुकारिता है उनको, कोई पहले इधर उधर की बातें और फिर चुपके से लास्ट में अपनी पॉइंट बता रहे कि भाई ये है, अब भी पता चला ये किस लिए कर रहा था ये सब, तो उसका स्वार्थ छिपा है उसके पीछे। और शुभ भावना से क्या करना है, बहुत हो गई महिमा पर रुकते कहां है, वो चालू ही है। फिर ये भी सोचना है अभी दूसरी नेगेटिव पॉइंट्स, जो आज महिमा कर रहा है कल ग्लानी करेगा, आज फूलों की वर्षा कर रहा है कल पत्थर मारेगा, ये भी हो सकता है। पर ये भी सोच के रखना है कि लोगों का कोई भरोसा नहीं है, किसी का यहाँ कोई भरोसा नहीं, आज स्तुति करने वाले कल तारीफ करेंगे, आज निंदा करने वाले कल तारीफ करेंगे, और आज तारीफ करने वाले कल निंदा करेंगे, बदलते रहते हैं लोग, उनकी मेमोरीज बदलती रहती है, पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है। तो यहाँ किस पर भरोसा करे, कोई भरोसे योग्य है ही नहीं, आधार एक बाप ही है बस, जिस जिसको भरोसा किया उसने धोखा दिया, जिस जिसको अपना समझा वो एक दिन ऐसा छुरा भोग के चला गया कि अभी तक खंजर का अभी तक खून बह रहा है, घाव तो अभी भी रिस रहा है, भरा नहीं है, नासूर हो रहा है, और उसको छुपा छुपा के रख के दर्द तब तक नहीं था, एक चित्र था ना, एक व्यक्ति ऐसे गले मिल रहा है, पीछे एक खंजर है घोपा हुआ, तो कहता है कि अब तक दर्द नहीं था, पर दर्द अब चालू हुआ जब पता चला कि जो जिसने वो भोका वो तुम ही हो मेरे अपने, जब तक ये था कि किसी और था इतना दर्द नहीं था, जब पता चला अपना है तब दर्द चालू हो गया। अभी ऐसा है तो स्तुति। और दूसरी बात, स्थित प्रज्ञ योगी अर्थात सबसे परे, स्थिति निंदा ये सबसे क्या लेना देना। और एक हमको वापस जाना है, ये मनुष्यों की स्तुति से क्या करना है, भगवान स्तुति करे वो महत्वपूर्ण है, इनकी स्तुति का क्या मोल, आज करेंगे कुछ कल कुछ और करेंगे। और दूसरी बात, शायद इसके जीवन में ये बहुत बड़ी बात है, पर ये कोई बड़ी बात है नहीं है, तो बहुत हमारे लिए बहुत छोटी बात है, ये हमने काम कर दिया है तो ड्यूटी है हमारी। कोई अगर हमने कपड़ा खरीदा किसी से, हमारे वो चमार ये होता है ना, जूता ठीक करके दिया, और उसके पीछे ही पड़ जाएंगे कि तुम कितने अच्छे हो, कितना तुमने अच्छे से मेरा, अब बोले मेरा ड्यूटी है जाओ अब यहां से, दूसरे कस्टमर आने हैं, पीछे ही पड़ जाए, अरे तुम भगवान ही हो, तुम ये ही हो, कितना अच्छा कर दिया तुम, हाँ कर दिया जाओ अब। तो ये तो बहुत छोटी सी बात थी ना, उसके लिए तो स्तुति कर रहे हैं, तो डोंट केयर। तो त्याग के भाग्य का भी त्याग, ये भी एक नई पॉइंट है मुरली से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मुरली में, चिंतन चालू रहे। अच्छा, ओम शांति।